ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में अधिक उपज वाली और जलवायु अनुकूल तथा बायो फोर्टिफाइड फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। दिल्ली सरकार ने न्यायालयों की इमारतों को विस्तार करने के लिए 427 करोड़ रुपए लागत की परियोजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की सीमा वर्ष 2030 तक 20% से अधिक बढ़ाकर 26% करेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज राजधानी के लोदी गार्डन में पौधारोपण किया और राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे 28वें दिल्ली पुस्तक मेले में आज बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी पहुंचे। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्राची प्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में अधिक उपज वाली और जलवायु अनुकूल तथा बायो फोर्टिफाइड फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी करेंगे। इन किस्मों में 34 खेती और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं। खेत की फसलों में बाजरा, चारा, तिलहन, दाल, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य फसलों सहित विभिन्न अनाजों के बीज जारी किए जाएंगे। बागवानी फसलों में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, मसाले, फूल और औषधीय पौधे भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी में न्यायालयों की इमारतों के विस्तार के लिए 427 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत राउज एवेन्यू क्षेत्र में नए जिला न्यायालय खंड का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 55 कोर्ट रूम बनाए जाएंगे ताकि कानूनी मामलों को तेजी से निपटाने में मदद मिले। इस बारे में वित्त मंत्री आतिशी ने कहा है कि हर भारतीय का मूल अधिकार है कि उसे जल्द और सुलभ न्याय मिले, लेकिन ये तभी संभव है जब न्यायालयों में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देशभर में न्यायाधीशों और अदालतों पर लंबित मुकदमों का बहुत बोझ है, जिससे मामलों के समाधान में अनावश्यक देरी हो रही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गन्ने के अलावा मक्का, टूटे चावल, फलों के छिलकों और बांस के उपयोग से एथेनॉल उत्पादन के लिए बहुआयामी और भविष्यवादी दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल संघ के कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि एथेनॉल उत्पादन एक लाभदायक और व्यवहारिक व्यवसाय है।
2030 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करने का लक्ष्य मोदी जी ने रखा है कि वो लक्ष्य को हम 25-26 तक ही सिद्ध कर लेंगे। लगभग 5000 करोड़ लीटर इथेनॉल पेट्रोल की बिक्री है और इसमें इथेनॉल की आवश्यकता 1000 करोड़ लीटर हो जाए।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज राजधानी के लोदी गार्डन में पौधारोपण किया। इस दौरान नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर श्री सक्सेना ने नई दिल्ली पालिका परिषद के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस अभियान के तहत पालिका परिषद के कर्मचारियों, स्कूली छात्रों और नागरिकों द्वारा आज 10,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने का ये कार्य शहर को हरा भरा बनाने में मदद करेगा और इससे लोगों को बेहतर वातावरण मिलेगा। वहीं इस अभियान के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज अपने आवास पर रुद्राक्ष का पौधा लगाया। इस अवसर पर श्री बिरला ने युवा पीढ़ी से पर्यावरण संरक्षण के महासंकल्प से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक सहभागिता से ही प्रकृति को समृद्ध बनाया जा सकता है। इस दौरान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद रहे। राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे 28वें दिल्ली पुस्तक मेले में आज बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी पहुंचे। 5 दिनों तक चलने वाले इस पुस्तक मेले का विषय भारतीय पुस्तकों का वैश्विक प्रभाव है। इस मेले का आयोजन इस वर्ष बच्चों और युवाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सुनिए हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ITPO द्वारा आयोजित दिल्ली पुस्तक मेले में इस बार 50 से अधिक प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 80 से अधिक स्टॉल लगाई गई हैं। मेले में पुस्तकों, पत्रिकाओं, शिक्षण सामग्री के साथ साथ उपहारों की भी एक विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। मेले में कई राज्यों से पुस्तक प्रेमी, लेखक और प्रकाशक पहुंच रहे हैं। पुस्तक मेले में इस बार आगंतुकों के लिए विशेष तौर पर रीडर्स कॉर्नर भी बनाया गया है, जहां पुस्तक प्रेमी आराम से अपनी पुस्तक पढ़ सकते हैं। मेले में फूड कोर्ट भी बनाया गया है, जहां लोग देश विदेश के व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं। इस बार मेले में स्टेशनरी और कॉर्पोरेट गिफ्ट कॉर्नर भी आकर्षण का केंद्र है। पुस्तक मेले में दिल्ली के एक विद्यालय से छात्रों के साथ आई शिक्षिका ने आकाशवाणी से बातचीत में इसे बच्चों के लिए शानदार अनुभव बताया। उन्होंने बताया कि मेले में बच्चों ने पुस्तकों के नए नए संग्रह देखे।
मेरा नाम जूली है। आज जब मैं आई तो मुझे लगा कि हाँ, बहुत सारी ऐसी बुक्स जो हम देखना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिली, तो आज का अनुभव मिला जुला के अच्छा रहा हमारा। बच्चों के नजरिए से भी किताबें अच्छी हैं। कई बार बच्चे कुछ चीजें मांगते हैं या फिर बच्चों को कुछ बातें समझानी इतनी आसान नहीं होती बोल के, जितना कि हम चाहते हैं अगर उन्हें किताब दे दें तो वो उनको पढ़ के या अपनी मर्जी से कुछ उठा के पढ़ लें और उन्हें समझ में आ जाए।
पुस्तक मेले में दिल्ली के एक स्कूल से पहुंचे छात्र ने बताया कि यह उसके लिए एक नया अनुभव था।
तो मेरा नाम देवांश है। इट इज अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बुक फेयर, तो काफी अच्छा लगा, काफी सारी चीजें देखने को मिली।
दिल्ली पुस्तक मेले का समापन रविवार को होगा, जिसमें पुस्तक प्रेमी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक मेले में निशुल्क प्रवेश कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए अभिषेक कपिल।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के ब्लड सेंटर और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग ने 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाते हुए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का उद्घाटन उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह ने किया। इस शिविर में लगभग 1400 रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान की 950 से अधिक यूनिट रक्तदान की गई। इस अवसर पर एम्स के निदेशक डॉ एम श्रीनिवास ने स्वैच्छिक रक्तदान के महत्व पर जोर देते हुए जरूरतमंद मरीजों की सहायता के लिए रक्तदान करने की अपील की। इस कार्यक्रम में विभिन्न अर्धसैनिक बलों, राष्ट्रीय कैडेट कोर और दिल्ली अग्निशमन विभाग सेवा से कई अधिकारियों को सम्मानित किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने समूह घ के 3,770 पदों और टीजीटी पंजाबी के 104 पदों के लिए परिणाम घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बारे में कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का मेरिट पर युवाओं को रोजगार देने का सिलसिला अनवरत जारी है।
साक्षी है, आज जो रिजल्ट निकला है 3,774 जो बच्चे डी ग्रुप में लगे हैं और 104 बच्चे टीजीटी पंजाबी में लगे हैं, जिनका रिजल्ट आज ही निकला है और बिना पर्ची बिना खर्ची के उन युवाओं को रोजगार दिया गया है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ मेरिट पर सरकारी नौकरियों में भर्तियां करती रहेगी। नौकरी पाने वाले एक युवा के अभिभावक ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में पारदर्शिता से नौकरी दिए जाने की प्रशंसा की।
मेरा पोता बिना खर्ची के बिना पर्ची के इस सरकार में लगा है। इस सरकार का मैं तहे दिल से मेरा सारा ही परिवार धन्यवाद करता है और खुशी जाहिर करता है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली ने आज अपने 55वें वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। इस दौरान डिग्री और डिप्लोमा कोर्सों के 2,600 से अधिक छात्रों को उनके प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इनमें 481 छात्र PhD के शामिल थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35% अधिक और अभी तक का सबसे उच्चतम है। IIT दिल्ली ने बताया कि स्नातक स्तर पर कुल पास हुए छात्रों में 25% छात्राएं हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर एक दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करके पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 मनाया। इस कार्यशाला का आयोजन कल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और गृह मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। आपदा प्रतिक्रिया को बढ़ाने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका पर 300 से अधिक भागीदारी चर्चा में शामिल हुए। इस कार्यशाला में जोखिम निर्धारण तथा फसल बीमा में भौगोलिक सूचना प्रणाली, जीआईएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सहित आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी सत्र का भी आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से पिछले 15 महीनों में कर्नाटक में 1200 किसानों की आत्महत्या की खबरों पर चुप्पी पर सवाल उठाया है। नई दिल्ली में आज श्री भाटिया ने पूछा कि क्या राहुल गांधी ने इन किसानों की मौत पर कोई चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में 3,25,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। श्री भाटिया ने यह भी आरोप लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए 59 वायदों में से केवल 2 वायदे पूरे किए हैं। उन्होंने पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार पर 50,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी के वायदे में घोटाले का भी आरोप लगाया। दिल्ली भाजपा राजधानी के 200 से अधिक झुग्गी क्लस्टरों में कल निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करेगी। इन शिविरों का आयोजन झुग्गी बस्ती विस्तारक अभियान के अंतर्गत किया जाएगा, जिसका उद्घाटन पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुबह 10 बजे करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी के मॉडल टाउन इलाके में आज एक पुरानी इमारत गिरने से 3 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली अग्निशमन विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया है कि विभाग को शाम 6:45 पर इमारत के गिरने की सूचना मिली थी, जिसके तुरंत बाद अग्निशमन दस्ते ने मौके पर पहुंचकर घायलों को निकाला और अस्पताल पहुंचाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में कल 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि अध्यक्ष विचारधारा या दल के आधार पर कार्य नहीं करता है, बल्कि वह सभी सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण होता है। उन्होंने प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सदन के कामकाज और सुविधाओं के बारे में नए सांसदों से सुझाव देने का आग्रह किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकों में कोर बैंकिंग पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में वित्त मंत्री ने बैंकों से जमा उधारी राशि से संबंधित प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा।
रिजर्व बैंक भी और सरकार भी बार बार बैंकों को कह रहे हैं कि आप आपके कोर बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर जरा ज्यादा ध्यान दें और थोड़ा सख्ती से डिपॉजिट कलेक्ट करें, फिर लेंड भी करें, क्योंकि बैंकिंग का कोर एक्टिविटी यही है। बाद में कोई कुछ 4-5 विषय, नया पोर्टफोलियो, ये सब जोड़ सकते हैं, मगर आपके कोर बिजनेस डिपॉजिट कलेक्शन एंड लेंडिंग मनी।
पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचने पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह, गोलकीपर पिया श्रीजेश और पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह सहित अन्य लोगों का माला पहनाकर स्वागत किया गया।
मेडल होता है और देश के लिए मेडल लेके आना सबसे बड़ी बात है। जो हमारी कोशिश थी कि हम फाइनल तक जाएं और गोल्ड मेडल जीतें, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। बट हम खाली हाथ वापस नहीं आए एंड बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना, ये भी हिस्ट्री है हॉकी के लिए और बहुत प्राउड है हम।
राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में अधिक उपज वाली और जलवायु अनुकूल तथा बायो फोर्टिफाइड फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। दिल्ली सरकार ने न्यायालयों की इमारतों के विस्तार के लिए 427 करोड़ रुपए लागत की परियोजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की सीमा वर्ष 2030 तक 20% से बढ़कर 26% करेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।